जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम खुदा के कलाम में से मसीही जिंदगी में बेफायदा और फायदा की बातों पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि खुदा का बंदा पालूस रसूल हुक्म देता है कलीसिया के कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। सो उसी से हमारा जो मजमून चला आ रहा है, कल हमने देखा था कि अपने बदन नाराजगी के हथियार होने के लिए ना दो। तो जिसे हमने सीखा था कि हमें नाराजगी के हथियार बनने के लिए ये काम नहीं करना कि खुदावन के खिलाफ खड़े हों, बल्कि हमें रास्ती के हथियार बनकर खुदावन खुदा के लिए इस्तेमाल होना है। इसलिए आज हम गौर करेंगे कि ये काम करो और वो काम ना करो। ये काम वो काम है जो दुनियावी है, जमीनी है, जिसमें खुदावन खुदा को खुशी नहीं, और वो काम जिसमें खुदावन खुदा खुश है वो हमें करने की जरूरत है। क्योंकि जिस लम्हा कोई भी खुदावन यीशु पर ईमान लाता है, उसी लम्हा का वो बेटा हो, बेटी हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उन सबको खुदावन यीशु मसीह अपनी आसमानी फौज में दर्ज कर लेता है। इसलिए खुदावन का बंदा पालूस रसूल हम सबको यहां पर सिखाता है कि हमें क्या करने की जरूरत है। सो तीसरे बाब की पहली आयत में क्या लिखा है? बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। ये हमें करने की जरूरत है। आलमे बाला यानी के आसमान के खुदा की बातों में, आसमानी बातों में, आसमानी भेदों के क्या रहने की जरूरत है? तलाश में रहने की जरूरत है। ये ईमानदारों को करने की जरूरत है। क्यों करने की जरूरत है? लिखा है जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, यीशु मसीह खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, हमें उन पोशीदा बातों और भेदों को जानने की जरूरत है और जाने। और क्या लिखा है दूसरी आयत में? फिर पालूस कहता है आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना के जमीन पर की चीजों के। सो हमें जमीन पर रहते हुए जमीनी चीजों की तलाश नहीं करनी, बल्कि आसमानी चीजों की तलाश करनी है। शायद पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताया हो, लेकिन खुदा का कलाम बताता है आप आसमानी लोग हो। हम आसमानी हैं, जमीन पर खुदा का मकसद पूरा करने के लिए भेजे गए। बहुत दफा कहते हैं ना कि खलाई मखलूक, जैसे ड्रामे देखते हैं कि खलाई मखलूक किसी दूसरे सियारे से आकर किसी और सियारे पर अपना मकसद पूरा करते हैं। सो बाइबल मुकद्दस हमें एलची कहती है, जिसके लिए इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अम्बेसडर। इस्लामाबाद अम्बेसरी में एक अम्बेसडर बैठा है किसी ना किसी मुल्क का, कोई अमेरिका का अम्बेसडर है, कोई यूनान का, कोई दूसरे मुल्कों का। तो वो वहाँ पर क्या कर रहा है? अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए बैठा हुआ है। वो वीज़ा बनाता है और वीज़े पर स्टैंप लगाता है, तो फिर कोई पाकिस्तान से अफ्रीका, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा जाते हैं। सो हम भी मसीही होते हुए इस जमीन पर उस पासपोर्ट के क्या हैं? पासपोर्ट के साथ क्या हैं? एलची हैं, यानी कि खुदा के वतन से भेजे हुए इस जमीन पर मसीह के एलची। और एलची का काम क्या है? नुमाइंदगी करना। जैसे इलेक्शन शुरू है, कोई शेर की नुमाइंदगी करता है, कोई लोटे की, कोई तीर की, कोई साइकिल की, कि जी मैं इसका नुमाइंदा हूं। सो पालूस रसूल कहता है तुम मसीह के साथ जलाए गए, यानी कि तुम्हारी नई पैदाइश हुई, तुम नए सिरे से पैदा हुए, इसलिए आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो। आज हम गौर करेंगे कि आलमे बाला की चीजें क्या हैं, वो आसमानी चीजें क्या हैं, वो आसमानी हिकमत क्या है, और फिर देखेंगे कि जमीनी चीजें कौन सी है जिसमें हमें जिंदगी बसर नहीं करनी। सो हम कौन हैं? एलची। कौन हैं? एलची, जैसे पिछले दिनों मैंने हम आपको बताया था कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है, अकाब। क्या कहती है? अकाब। अकाबा दे वांगर खुदावंद खुदा तेनू जोर दे के। हम अकाब हैं, हम मुर्गी नहीं। मुर्गी कचरा खाती है, मुर्गी को उड़ना नहीं आता जिस तरह अकाब उड़ता है। सो इसी तरह हम आसमानी लोग हैं, हम जमीनी लोग इसलिए हैं क्योंकि हम जमीन पर उसका मकसद पूरा करने के लिए आए हैं। ये हर एक इंसान की अपनी क्या है, चॉइस, जिसे कहते हैं चुनाव या फैसला है कि हम जमीन पर रह के जमीनी हो जाएं या फिर जमीन पर रहते हुए आसमानियों की तरह जिंदगी बसर करें। सो पालूस रसूल कहता है, आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना के जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। हमें इस पोशीदा राज को जानने की जरूरत है कि वो क्या है, क्योंकि जब हम जमीन पर इस राज को जानेंगे तो पालूस कहता है जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, जब वो आएगा तो हम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाएंगे। इससे पहले कि हम वहां पर जाहिर किए जाएं कि हम कौन हैं, हमें अपनी हालत को यहां पर देखने की जरूरत है। हम आसमानी लोग हैं इसलिए हमें आसमानियों की तरह जिंदगी गुजारने की जरूरत है। आए आसमानी रवैये को देखें कि आसमानी रवैया कैसा हो सकता है। मेरे साथ निकाले रोमियो, रोमियो 12 बाप, रोमियो 12 बाप। वहां पर हमें मसीही जिंदगी को जमीन पर आसमानी लिहाज से जिंदगी बसर करने का क्या दिया गया है, एक नक्शा या एक तस्वीर पेश की गई है। सो खुदावंद का बंदा पालूस रसूल हमें कहता है, कल हमने सीखा था कि अपने आप को खुदा के हजूर जिंदा कुर्बानी की तरह पेश करो। जैसे शेर को मर्दार पसंद नहीं, वैसे ही खुदावंद खुदा को यहूदा का शेरे बब्बर कहा गया है। उसे भी मुर्दा या बेकार अबातों से कोई गरज नहीं है। हम आसमानी हैं इसलिए हमें आसमानी तस्वीर यहां पर पेश की गई है। सो जब हम 9वीं आयत से पढ़ते हैं तो 9वीं आयत में ये आसमानी रवैया है, ये जमीन का रवैया हो नहीं सकता। सो क्या कहा गया है, मोहब्बत बेरिया हो, यानी कि ऐसी मोहब्बत एक दूसरे से करो जैसी खुदा ने दुनिया से की, जिसमें किसी किस्म का दिखावा या पखंडीपन नहीं है। हम सब इस दुनिया में रहते हैं, बहुत दफ़ा हम एक दूसरे से, हम दुनिया को छोड़ दे, दुनिया बाहर है, हम एक दूसरे से बहुत दफ़ा, सच की बात है, हम एक दूसरे से बहुत दफ़ा मतलब की कहीं ना कहीं पर मोहब्बत करते हैं। मसीही होते हुए हमें आसमानी सोच के मुताबिक मोहब्बत क्या करनी चाहिए, बेगर्ज हो। मोहब्बत बेगर्ज हो, मोहब्बत बेमतलब हो और मोहब्बत बगैर तरफदारी के हो। अगर ऐसी मोहब्बत होगी तो ये आसमानी मोहब्बत है, अगर नहीं तो रियाकारी की मोहब्बत क्या है, ए मेरे चाचे दा पुत, ओ मेरे दूर दे मामे दा पुत, मोहब्बत दे विच फर्क। सो हमें मोहब्बत कैसी करनी है, आसमानी मोहब्बत। आगे जी, बदी से नफरत रखो, बदी से नफरत रखो, हर वो बुरे काम से जो हमारे लबों से, हमारी आंखों से, हमारे कानों से या हमारे हाथों और पाँव से हो सकता है। बदी हम किस तरह कर सकते हैं, अपने मुंह से। बदगोही क्या करती है, किसी दूसरी की बदी। ये आसमानी नहीं बल्कि जमीनी रवैया है। बदी हम किसी की बदगोही सुनते हुए, बहुत दफा हमें ज़्यादा वक्त मिलता है कि अगर किसी की बदगोही शुरू हो जाए तो हम उसमें ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, फिर भूल जाते हैं कि चाय पीनी थी या नहीं, फिर भूल जाते हैं कि कोई घर का काम करना था या नहीं। सो बदी हम सुनने में भी कर सकते हैं, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि खबरदार तुम कैसे सुनते हो। जब आपके सामने कोई बदी किसी की करे तो कहो कि भाई, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है ऐब जोई ना करो। सो ये क्या है, आसमानी रवैया। जब हम जमीनी रवैया बदी हाँ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਵੱਈਆ ਸੋ ਬਦੀ ਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਸੁਣਨੇ ਮੇ ਬੋਲਨੇ ਮੇ ਔਰ ਬਦੀ ਕੀ ਪੈਰਵੀ ਮੇ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਕੋ ਜ਼ਬੂਰ 141 ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਬਾਨ ਬਿਠਾ सोबदी से किनारा नेकी से लिपटे रहो नेकी से लिपटी रहो यहां पर जो नेकी का लफ्ज है वो लफ्ज यूनानी जबान में से कहा गया है आगाथास ऐसी नेकी सिर्फ और सिर्फ जो खुदा से निकल सकती है जो आसमानी है जमीन पर ऐसी नेकी पाई नहीं जाती अगर आप और मैं एक दूसरे से नेकी करेंगे तो वो नेकी कहां से निकलेगी खुदा की तरफ से हम अपनी तरफ से नेकी नहीं कर सकते जैसे मैं बहुत दफा कहता हूं कि हम जिस्मानी और जमीनी लोग होते हुए अंदाजा नहीं लगा सकते कि यीशु मसीह ने क्या लिखा है इब्तदा में कलाम था कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और सब चीजें किसके वसीला से पैदा हुई उसी के वसीला से किसके वसीला से यीशु मसीह से यीशु मसीह ने इब्तदा में कलाम किया और कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई ऐसे हुआ जी रोशनी हो जा तमाम पानी जो बिखरा हुआ था एक जगह पर इकट्ठा हो जाए तमाम परिंदे पैदा हो जाएं तमाम जानदार पैदा हो जाएं तमाम रींगने वाले तमाम उड़ने वाले हर एक चीज को यीशु मसीह ने हुक्म दिया और 6 दिन में दुनिया तैयार हो गई 6 दिन में हमारा जहन अंदाजा नहीं लगा सकता हम जमीन के हैं जमीन पर रहते हुए उस आसमानी मकान के बारे में याद है यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं आज 2014 है 2000 से ज्यादा साल यीशु मसीह को हो गए हैं आसमान पर गए हुए क्या करता है यीशु मसीह वहां पर नारियल पानी पी रहा है नहीं आपके लिए मेरे लिए हर एक मुकद्दसीन के लिए वो मकान वो जगह तैयार हो रहा है जिसने 6 दिन में इतनी खूबसूरत जमीन बनाई कभी मौका मिले तो यमन की पहाड़ियां कभी मौका मिले तो जम्मू कश्मीर जिसके वसीला से इंडिया और पाकिस्तान में कत्लो गारत की जंग लगी हुई है सालों से कभी मौका मिले तो मालम जप्पा के पहाड़ों को जो कोयटा जो स्वात की तरफ हैं जाकर देखें और जब कभी मौका मिले तो सुबह सुबह उठकर अपने शहर के इर्द गिर्द गांव के इलाका को देखें कि कितना खूबसूरत नजर आता है कि 6 दिन में उसने इतनी खूबसूरती पैदा की तो 2000 साल में खुदावंद यीशु मसीह क्या बनाएगा इसलिए नेकी से लिपटे रहो नेकी से लिपटे रहो वो आपके लिए और मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है और उस जगह का हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते हमारा इतना सा जहन उस खुदा को जो पूरी दुनिया में है समझ नहीं सकता लेकिन एक दिन आएगा जब हम उसकी हजूरी में होंगे जैसे वो है वैसे हम भी होंगे जैसे वो जलाली है हम भी जलाली बदन रखेंगे जैसे वो आसमानी है हम भी आसमानी होंगे नेकी से लिपटे रहो ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो ब्रादराना मोहब्बत से बहुत दफा ईमानदारों में सबसे ज्यादा ये बात जो फसाद की पाता है वो इब्लीस पाता है जुदाई जुदाई भी किन बातों पर जिन पर कोई मतलब नहीं बनता पिछले दिनों में हमने जब अमेरिका में हम यूथ ग्रुप करते हैं मैं वहाँ पर कलाम सुनाने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर इंटरव्यू किया गया एक बंदा शैतान बना और एक बंदा खुदा का खादम बना और उसके साथ गुफ्तगू हो रही थी कि शैतान तुझे किस बातों में ज़्यादा मज़ा आता है तू किस तरह कलीसिया को बहकाता है कहता बहुत अच्छी बात है सादा सा काम है मेरे लिए शैतान कहता है कि किसी के जहन में मैं किसी की चुगली डालता हूँ और चुगली के बायस क्या होते हैं ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं अच्छा शैतान ये हो गया उसके बाद आसान सी बात है जी मसीही ईमानदार बहुत क्या हैं भोले हैं यीशु मसीह ने कहा था सांप की तरह चलाक हो भोले हैं वो क्या करते हैं लाइलग हैं ये अब्लीस के साथ बात हो रही है, पादरी साहब एक तरफ बैठे हैं, दूसरा तरफ अब्लीस बैठा है, कि अब्लीस तेरे पास क्या है कि तू कलीसिया को बहकाता है। अब्लीस कहता है कि जी मसीही ईमानदार अपने खुदा की उस कुदरत को जिसने सब कुछ बनाया, जो कि इख्तियार रखता है कि मुझे एक मिनट में फना कर दे। अब्लीस कहता है कि मैं जानता हूं कि वो मुझे फना कर सकता है, लेकिन मैं अपनी झूठी कुदरत से मसीहियों को क्या करता हूं, बहकाता हूं। मोहब्बत क्या हो? आपस में एक दूसरे से ब्रादराना हो, ब्रादराना मोहब्बत, भाइयों वाली मोहब्बत। और इस पर वक्त लगेगा, बहुत दफा हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा है तो हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। याद रखें, हम यीशु मसीह के हुक्म को तोड़ रहे हैं। मसीहियों में माफी का दर्स है, ये नहीं कहीं पर मुझे बता दें कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि माफ ना करो। पूरी बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक गुनाह है जिसकी माफी नहीं होगी, बाकी तमाम गुनाहों की माफी है। और वो माफी किस गुनाह की नहीं, कि जो कोई यीशु मसीह का इनकार करेगा उसे कभी भी माफी नहीं मिलेगी, ना इस जहान में ना आने वाले जहान में। जब खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी के सामने बहुत से लोग घुटने टेकेंगे और हर एक जुबान इकरार करेगी कि वो बहुत से लोगों का टोला होगा जिन्होंने जमीन पर यीशु को कबूल नहीं किया, कहेंगे कि हाँ हम मानते हैं कि हाँ तू खुदावंद है। यीशु मसीह कहेगा बहुत देर हो चुकी, मैं तुम्हें नहीं जानता। ब्रादराना मोहब्बत, 31,173 आयतें हैं बाइबल में, कितनी हैं? 31,173। इन आयात में कहीं पर भी हमें ये नहीं मिलता कि यीशु ने कहा हो कि माफ ना करो। ब्रादराना मोहब्बत माफ करती है, इसलिए अगर माफी नहीं तो फिर हम अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, हम मसीही आसमानी रवैये में जिंदगी गुजार नहीं रहे। इज्जत के रौ से एक दूसरे को बेहतर समझो, इसका हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर मैं आपकी इज्जत करता हूं तो इसे ये बात नहीं समझनी चाहिए कि मुझसे डरता है। इज्जत के रौ से एक दूसरे से हमें एक दूसरे को बेहतर समझना चाहिए, अच्छे रवैये से। ये आसमानी रवैया है, जमीनी रवैया नहीं हो सकता। आसमानी रवैया देखना चाहते हैं, कल हमने पढ़ा था कि नौकर अपने मालक की इज्जत करे और मालक अपने नौकर को क्या जाने, अपना भाई जाने। लेकिन आज के जागीरदार क्या हैं, और नौकर आओ कमी आओ कूड़ कबाड़ पीछे रह, ऐसे करते हैं। ये दुनियावी रवैया है। लफ्ज कूड़े का बाइबल मुकद्दस में आया है, आसमान से उस तकब्बर से भरे हुए फरिश्ते को जिसे सुबह का सितारा कहा गया था, आसमान से कूड़े की तरह नीचे गिरा दिया गया। पालूस रसूल फिलिपियों 2 बाप उसकी 10वीं और 8वीं आयत में लिखता है कि मैंने मसीह के लिए जब मैंने आसमानी बातों पर गौर की तो जिस्मानी बातों को, दुनियावी बातों को क्या समझा, कूड़ा। जिसके लिए हम जानवर का गंध भी कह सकते हैं, इंसान का गंध भी कह सकते हैं। यूनानी जबान का लफ्ज सब मेरे साथ कह सकते हैं, स्कूबाला, यानी के मजबला, गंध। उसने दुनियावी और जमीनी बातों को क्या समझा, गंध समझा। हमें जमीन पर रहते हुए अगर हम आसमान की छोटी सी झलक देखना चाहते हैं तो इस बात से शुरू करना होगा, माफी, एक दूसरे को माफ करना। वो माफी साइकिल चोरी की हो सकती है, वो माफी किसी ने किसी को सब्जी नहीं दी, वो माफी किसी ने किसी को गाली दी, वो माफी किसी ने किसी के साथ ज्यादती की, वो माफी खामद और बीवी के दरमियान, वो माफी माफी किसी भी काम में हो सकती है, माफ करना। वो खामद और बीवी के दरमियान, माँ और बेटे के दरमियान अगर माफी नहीं तो फिर हम डॉक्टर की दुकान पर पड़ी हुई उस बोतल की मानद है जिस पर लिखा हुआ है ग्राइवेटर और उसके बीच अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। हमें मसीही ऐसे नहीं बनना कि हमारे माथे पर लिखा हो मसीही, या हमारे घर में सलीब लगी हो और गले में सलीब पाई हो और फिर अंदर से हम कुछ भी ना हो। अगर माफी नहीं, क्योंकि ये दर्स ना हमें किसी और मज़हब में मिलता है, आप सब इस बात से जानते हैं। किसी और मज़हब में माफ़ी का दर्स नहीं, दांत के बदले दांत है, आंख के बदले आंख है, हाथ के बदले हाथ है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था, मैं तुमको ये बात दिलाना चाहता हूं याद के, तुम्हें सुना था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यह आसमानी रवैया है, जमीनी रवैया नहीं हो सकता। सो हमें आसमानियों की तरह जिंदगी गुजारनी है। इज्जत के रौ से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो उस कोशिश में सुस्ती ना करें, कोशिश में सुस्ती ना करें। रूहानी जोश में भरे रहो, रूहानी जोश में भरे रहो। रूहानी लोग कहाँ के हैं? आसमानी। हम रूहानी लोग हैं, क्या आप यकीन करते हैं कि नहीं? मेरी आपके सामने तमाम खुदा के कलाम में से हुक्मों को, दलीलों को, बयानात को, तफसीरों को बयान करने का मकसद यही है कि हम जाने कि हम आसमानी लोग हैं और ज़मीन पर आसमानियों की तरह ज़िंदगी बसर करें। सो आज इस पाक दिन में कि खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल पहले मुर्दों में से जी उठे, जिसके लिए हम अतवार की इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं, अपने दिलों पर गौर करने की ज़रूरत है। बहनों से, भाइयों से, अगर आपको किसी ने कभी माफ़ नहीं किया तो आज सादा तौर पर उसके पास जाकर कहने की ज़रूरत है, अगर जा सकते हैं। अगर आपका सताने वाला किसी दूसरे शहर में, तो जहाँ पर भी हैं आप दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद मैं उसे माफ़ करता हूँ कि उसने मेरे पैसे, उसने मेरे साथ ज़्यादती की, उसने मुझे बोलने में, उसने मुझे नीचा किया, उसने मेरी बेहरुमती की, उसने मुझे नहीं जाना कि मेरे सिर में सफ़ेद बाल है। माफ़ करें। आप माफ़ करेंगे तो खुदावंद खुदा उसे माफ़ करेगा। वो माफ़ करे या ना करे, आपने उसे आज़ाद कर दिया। आपकी माफ़ी लोगों को आज़ाद करती है। यीशु मसीह ने किस लिए कहा था? तमाम मौजज़ात में तेरे गुनाह माफ़ हुए, जा अपनी चारपाई उठा। यीशु मसीह ने कहा था तेरे गुनाह माफ़ हुए, फिर गुनाह ना करना। सो हम जब माफ़ करते हैं तो माफ़ी का मतलब जो दुनियावी है कि अगर मैनू माफ़ करेगा तो मैं इनू माफ़ करांगा, ऐसा ही है जी। आसमानी रवैया, यीशु मसीह ने अपने तमाम लानत करने वालों को, गालियां देने वालों को, और उन्होंने जिन्होंने उसकी दाढ़ी को खींच दिया, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, जिन्होंने उसकी पीठ को कोड़ों से छली कर दिया, क्या कहा? ए बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते। सो क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा? क्या यीशु मसीह ये नहीं कह सकता था? रूमी दरोगा, फरीसी, निकुदीमस, तुम सब आकर मेरे पास माफी मांगो, फिर मैं माफ करूंगा। ये आसमानी रवैया नहीं। आसमानी रवैया क्या है? ए बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते। वैसे ही हमें भी, जब कोई हमारी खता करता है, कब कोई हमें कहता है, सादा तौर पर खुदावंद ये आसमानी सोच से ना वाकिफ है, इसे माफ़ कर, मैं इसे माफ़ करता हूँ, माफ़ करती हूँ। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो आज जाकर उसे सादा तौर पर कहें, ख्वाब वो सुने या ना सुने, बहन भाई मैं तुझे माफ़ करता हूँ, अगर मैंने तेरी कोई खुता की है तो मुझे माफ़ कर। अगर वो माफ़ करता है तो ठीक है, नहीं माफ़ करता तो आसमान में वो छोटा सा फिल्म का सीन, वो घड़ी, वो वक्त, वो सेकंड, वो दिन, वो साल, वो दौर, बारिश पड़ी थी नहीं पड़ी थी, सब खुदावंद के फरिश्ते लिख रहे हैं। तो जब आप और मैं खुदा की हुज़ूरी में खड़े होंगे तो खुदावंद कहेगा कि उसने तुझे माफ़ किया था, तूने मुझे माफ़ नहीं किया। आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें, खुदावंद के हुजूर झुकें और रूहानी जोश में भरे रहें, और अबलीस को मौका ना दें कि आसानी से कहता है, ओह मसीही एक मिनट में धोखा। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आसमानी अकल दी है। आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ करें।